Welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार सोनू जी. थैंक यू राजेश.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ राजेश लेख.
Prime Minister Narendra Modi says this is the time of dawn of orange economy in India. Inaugurates first World Audiovisual Entertainment Wave Summit in Mumbai today. Gross GST collection surges by 12.6% to an all-time high of 2.37 lakh crore rupees in April. Domestic stock markets remain closed on account of Maharashtra Day. And global crude oil prices fall amid mounting supply concerns. Brent crude trades at $59.85 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी के उदय का समय है. मुंबई में उन्होंने आज पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का किया उद्घाटन. जीएसटी का सकल संग्रह अप्रैल में 12.6% के उछाल से अब तक के रिकॉर्ड स्तर 2,37,000 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा. घरेलू शेयर बाजार महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बंद रहे और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गिर गईं. ब्रेंट $67.85 प्रति बैरल पर था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा युग में भारत में ऑरेंज इकोनॉमी के उदय हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी के तीन स्तंभ हैं, कंटेंट, रचनात्मकता और संस्कृति. श्री मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है. उन्होंने कहा कि वैश्विक एनिमेशन बाजार में अपार संभावनाएं हैं. वर्तमान में ये बाजार 4.30 खरब डॉलर से अधिक का है और अगले दशक में इसके दोगुना होने की संभावना है. भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी. श्री मोदी ने कहा कि देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और पूरे विश्व में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है.
आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है. दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है. विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है. भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस टूरिस्ट का भी देश है.
Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said the Waves Summit will create new economic opportunities. Addressing the inaugural session of the first World Audiovisual Entertainment Summit Waves 2025 at Jio World Convention Center in Mumbai today, Mr. Vaishnaw said the summit will provide a global platform to creators and provide them with exposure to new technology. The minister said it will connect the creators to buyers and investors around the world. Mr. Vaishnav added that the Indian Institute of Creative Technology will be set up in Mumbai with a funding of 400 crore rupees. He said WAVES and the Indian Institute of Creative Technology will further strengthen Mumbai's role as a key center in the global creative ecosystem. We want to ask you, Vishal, first about what the Prime Minister has said, that the current era marks the sunrise era of the orange economy in India. Would you elaborate on this?
Well, Rajesh ji, the reason, let's first understand what is orange economy, because, you know, for us to have a larger understanding and for our listeners to have a larger understanding of why Wave Summit is a really significant and important step, and also, you know, what will it contribute as far as country's growth is concerned. So, first of all, orange economy is basically creator economy. And the reason why we you know, refer to it as orange economy is because orange has traditionally been considered the color of creativity. It was earlier limited to just arts and culture, but with the advent of technology, you know, more sectors have been added to it. For example, robotics, animation, coding, telecommunication, gaming, and of course, you know, the world of content creation, which is growing leaps and bounds nowadays. Now, whatever is created in this economy, that is goods and services, is basically the product of, you know, of an idea of a creator. And that is why the creator economy, which we are referring to, is something which is really, really important. Now, there are some numbers which were pointed out by Prime Minister in his address at the WAVE Summit. I would also want to juxtapose those numbers with some, you know, international figures, numbers which international organizations are talking about. For example, there's an estimate that as far as orange economy is concerned, it contributes more than 3% to the world's GDP. It accounts for approximately more than 30-35 million jobs across the world. And some upcoming areas which the Prime Minister referred to, for example, the world of animation and graphics, or, you know, gaming is another area. They're, of course, going to add more value to the orange economy itself, and thereby contributing more to the Indian economic growth, because it's going to contribute to the Indian GDP. There will be a sort of an ecosystem which will be developed, wherein there will be content creators. Like, for example, you know, in the 90s, we used to have this software boom. We used to have software developers. They used to, you know, come up with new design for websites or other new upcoming things in the world of World Wide Web, that is WWW. This is like a redux of after 25 years, but in a creative avatar. Yeah.
So Vishal, agar hum baat kare rise of technology ki, jo har segment ko hi touch kar raha hai. So technology jis tarah se badh rahi hai, to ek creator jo hai, wo sirf ek smartphone ke saath bhi content create kar sakta hai. So democratize ho gaya hai orange economy bhi, aur yahan par jo unko investors ke saath unka ek kahe ki you know, they're coming under the same roof. Ye bahut important hai, aur aapko लगता है कि इसलिए भी इस इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, रिक्रिएशन को भी लोग जो है एक अपने जिंदगी का अहम हिस्सा मानने लगे हैं. सो ये रिस्पेक्ट भी दे रहा है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ये इस तरह का आयोजन.
जी बिल्कुल, देखिए हर इकोनॉमी की तरह जो ऑरेंज इकोनॉमी है, उसके भी दो महत्वपूर्ण पहलू हैं. एक वो जिसमें किसी के पास एक कोई बिजनेस आइडिया है. यहाँ हम क्रिएटिव आइडिया की बात करेंगे, क्योंकि ऑरेंज इकोनॉमी में बिजनेस का मतलब है क्रिएटिविटी. तो कोई वो व्यक्ति जिसके पास वो क्रिएटिव आइडिया है, और दूसरे वो लोग जो कि उस क्रिएटिव आइडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे. तो इस तरह के जो आयोजन है, या इस तरह की जो पहल की गई है सरकार की तरफ से, वेव समिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार देश में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को लेकर कोई एक किसी एक संस्थान को स्थापित करने की बात की जा रही है, और 400 करोड़ के बजट के साथ कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। तो हम जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और किस तरह से ये चलेगा उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें मोटे तौर पर ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर वो युवा या वो बुजुर्ग भी, कोई भी व्यक्ति जिसके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया है, जो कि अपने स्मार्टफोन से उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे कुछ आइडिया को आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन अगर उसको प्रोपगेट करना है, अगर उसको एक प्रॉपर बिजनेस आइडिया की तरह फ्लो करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और वो इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ मिलेगी? अगर आप ऐसे आइडियाज़ को ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जगह देंगे जहाँ पर इन्वेस्टर्स मौजूद होंगे, तो उनको ज़रूर मौका मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी समिट में 20 ऐसी क्रिएटर्स की फिल्में शोकेस की गई, जिनको देश भर के जो क्रिएटर्स थे उनको बुलाकर पहले उनको मौका दिया गया, उनमें से 20 को चूज़ किया गया, फिर उनको महीने भर का समय दिया गया कि आप इसको रिफ़ाइन करिए, और रिफ़ाइन करने के बाद उन्होंने अपने आइडियाज़ को रिफ़ाइन किया, और फिर उन्होंने अपनी जो कृतियाँ जिन्हें कहा जाए, क्रिएटिव पीस जिन्हें कहा जाए, उसको उन्होंने पेश किया। तो वो दिखाता है, दर्शाता है कि क्या ऑफ़र करने को है, जो क्रिएटर्स हैं उनके पास क्या ऑफर करने को है, और इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ये जो मैं कहूँगा कि ऑरेंज इकोनॉमी की जो तेज़ गति से चलने वाली, तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो रेल है, वो अब जब प्लेटफॉर्म से निकल रही है, तो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर मौका है कि वो बढ़िया सा कोई क्रिएटर डब्बा देख के उसमें बैठ सकते हैं, ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिले, क्रिएटर को भी मिले, ओवरऑल ऑरेंज इकोनॉमी को भी मिले, और इसका कंट्रीब्यूशन क्योंकि भारत की जीडीपी में होगा, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उसमें भी इसको।
सो व्हाट आई हियर यू से विशाल इज दैट दिस विल गिव एन इम्पेटस टू अ यंग ब्लड टू शोकेस देयर टैलेंट, एंड नॉट ओनली दैट, इट विल आल्सो हैव अ बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर देम।
इंडीड इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द क्रिएटर्स एंड द इन्वेस्टर्स एंड ऑफ कोर्स द नेशन।
और जो भारत का जो कल्चर है वो भी बाकी देशों में दर्शित, ऑलरेडी प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उसको भी और गति मिलेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन सीरियल्स है वो भी यहाँ पर, या जो फॉरेन कंटेंट है यहाँ पर प्रचलित हो रहा है।
जी बिल्कुल, और देखिए एक बूस्ट मिलता है कंट्री की इमेज को, देश के कल्चर को, देश की जो हेरिटेज है उसको, और ख़ास तौर पे हमारे देश में जिस तरह से कंटेंट क्रिएट किया जाता है उसको, जो जिन्हें हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, अलग अलग अवार्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भी बहुत तवज्जो मिल रही है। हर तरह की जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, चाहे हम उसे कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा इन सब में केवल डिवाइड करना चाहें, लेकिन ये जो इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर है, जिसमें फ्री फ्लोइंग आइडियाज़ की इकोनॉमी है, जिसमें आप कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचता हूँ, उसके ऊपर अगर हम कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, कंटेंट से मतलब केवल कोई रील बनाना या कोई शॉर्ट फिल्म बनाना नहीं है, उसका मतलब एनिमेशन से भी है, उसका मतलब गेमिंग के क्षेत्र में भी है, उसका मतलब रोबोटिक्स में भी है, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े अगर और कुछ पहलू हैं तो उनसे भी।
लाइव कॉन्सर्ट्स की भी बात करी, म्यूजिक की बात करी।
जी बिल्कुल, और इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो कि मैं कहूंगा कि इसमें आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार जब ये इकोसिस्टम अपने तरीके से चलना शुरू करेगा और आगे बढ़ेगा, और उसमें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाहित होगी, तो वो एक बेहतरीन नतीजा।
दैट्स व्हाई विशाल द प्राइम मिनिस्टर आल्सो सिंगल्ड आउट द ग्लोबल एनिमेशन मार्केट। He mentioned that it has a huge potential.
Indeed.
Currently, $430 billion, and it's projected to double in the next decade. So, and India could take advantage of that.
Well, indeed, yes.
और चलते हैं अगली खबर की ओर, जो भी उतनी ही उत्साहजनक है। भारत का वस्तु और सेवा कर जीएसटी का कुल संकलन पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले 12.6% का उछाल दर्ज करते हुए 2,37,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के लिए केंद्रीय जीएसटी का कुल संकलन 48,634 करोड़ रुपए था और राज्य जीएसटी 59,372 करोड़ रुपए था। एकीकृत जीएसटी संकलन 1,10,000 करोड़ रुपए को पार कर गया और कुल उपकर संग्रह 13,451 करोड़ रुपए रहा। घरेलू ट्रांजैक्शन से जीएसटी राजस्व 10.7% बढ़कर लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए हो गया। वहीं आयातित वस्तुओं से जीएसटी राजस्व 20.8% बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। अप्रैल के दौरान 27,341 करोड़ रुपए के कुल रिफंड जारी किए गए, जो 48.3% की बढ़त है। रिफंड निकालने के बाद नेट जीएसटी संकलन अप्रैल में 9.1% की वृद्धि से लगभग 2,09,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत के बाद से अप्रैल 2024 में जीएसटी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह 2,10,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ था। पिछले महीने मार्च 2025 में ये आंकड़ा 1,96,000 करोड़ रुपए था। ऐसे समय पर विशाल, जब पूरा विश्व एक थोड़ी अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं रिसेशन की, स्लोडाउन की, ऐसे में जो हमारे देश का जो ये जीएसटी के आंकड़े आए हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग, कैसे देखते हैं आप इनको पूरे परिप्रेक्ष्य में?
देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से जीएसटी को लागू किया गया है, लगभग 8 साल होने को आ रहे हैं, उसमें ये सेकंड हाईएस्ट आंकड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेकंड हाईएस्ट आंकड़ा ये माना
जाता है। ये हाईएस्ट है और पिछले अप्रैल सेकंड हाईएस्ट
वो सेकंड हाईएस्ट था। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब आप जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो वो दर्शाता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी सेहत कैसी है। अगर देश कोई सरकार को टैक्स कलेक्शन जो है, खासतौर पे गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम बात करें, अगर उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में टैक्स मिल रहा है तो इसका मतलब जो डिमांड लेवल है मार्केट में वो ज़्यादा है, सप्लाई है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बेहतरीन है, क्योंकि इसका मतलब लोग बाज़ारों में निकल कर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स की हों या फिर सर्विसेज की हों, और वो जो खरीदना चाहते हैं वो उनको उतनी ही आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है। और किसी भी रॉबस्ट इकोनॉमी के लिए डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो अगर बहुत ही एक उनमें एक सामंजस्य है और वो एक बेहतरीन तरीके से अगर चल पा रही हैं तो यानी कि वो एक इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर, पॉजिटिव इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर माना जा सकता है। दूसरा इसमें का बड़ा कारण ये है, दो बड़े कारण माने जा सकते हैं। पहला तो ये कि क्योंकि एक रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, जो ट्रम्प टैरिफ जिसको हम कहते हैं, उसको लेकर जो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उस दौरान भारत में जीएसटी की कलेक्शन का रिकॉर्ड बनना, वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि FIIs जिनको हम कहते हैं, उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देगा कि भाई ये इकोनॉमी, इसमें कुछ बात है, इसमें दम है और ये लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा उसका पहलू ये भी है कि इतनी ज़्यादा कलेक्शन होने के पीछे ये एक कारण भी है, क्योंकि चाइना के साथ जो रेसिप्रोकल ट्रेड में जो अभी भी फिगर्स जो है 100% से ऊपर चल रही हैं, उसके चलते एक्सेस एक्सपोर्ट हुआ है इससे पहले कि रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ जो हैं वो किक इन होते, वो शुरू होते। बड़ी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हों या और हों, उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है इंडिया से और यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में, तो उसका सीधा फायदा भारतीय इकोनॉमी को मिला है, भारत सरकार को मिला है। तो ये कई पहलू हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे लिए तो विन-विन सिचुएशन है।
So that's why it seems that the foreign portfolio investors have pumped in nearly 4.4 billion into Indian equities over the past 10 sessions, marking the longest buying streak in nearly 2 years. And this GST collection could be one of the reasons why they are so interested, as you said.
Well, yes, Rajesh, you're very right, because if you look at the trajectory of foreign institutional investors, that is the FIIs investing in India and Indian markets, last 10 days has seen a remarkable U-turn by the FIIs. If you look at a fortnight prior to that, then the FIIs were pulling out money, which is a very normal thing to happen in any economy, and of course Indian markets as well. And this keeps on happening, that the FIIs pull out money, then they come back, then they pull out money, then they come back, depending upon their own assessment of the economic situation and their own assessment of the avenues of better profits elsewhere in other markets as well. But given the present economic scenario globally, because of the Trump tariffs, the reciprocal trade tariffs, the FIIs doesn't seem to have any best bet other than the Indian economy. One, because of our, strong fundamentals, that is one. Two, because of the fact that these reciprocal tariffs are not going to pinch us as hard as they're going to pinch other, major countries. Consumer economies mm-hmm. like China or maybe other smaller economies like Vietnam or Thailand or somewhere else as well. So that is why, and European markets as well. So clearly for the FIIs and they're the best guys when you're trying to crunch down these numbers, because ultimately it's about their money. Why would they come back in hordes if they don't believe that, yes, this is the place to be? So it looks like that this is the place to be. They finally realized once again in the given, present economic situation and the way things are moving ahead on, trade talks and the reciprocal tariffs and all that between United States and India. I believe a lot many positive days to come about.
There's also a report that there's going to be one more stimulus given in China. How will that affect our trade, their trade, the international trade?
Well, as far as China is concerned, they'll pull out all stops to stay afloat in this war of nerves, I call it, between United States and China, because none of them is willing to blink as of now. And it is starting to pinch both ways. As far as China is concerned, of course, it is pinching them because their economy, I won't say solely, but very majorly dependent on the exports as well. As far as United States is concerned, we've already seen the data, and the data clearly points out that, their economic growth has tanked by around 0.3%. Although the projections were and the expectations were that it'll go up by 0.3%, but instead it has come down by 0.3% in the first quarter of this calendar year. So if you look at that way, it is not doing either of them good. But how long will both of them be able to sustain this stance is something which both the governments in these countries and the central banks in these countries will have to figure out. And in the meanwhile, they'll try and, ease down the domestic pressure. They'll try and ease down the domestic criticism as well by coming out with measures like the one you mentioned, stimulus in China. Perhaps maybe President Trump might also think of something like that to go ahead and, give that jump start to the U.S. manufacturing sector, which ultimately is his primary goal in going on with the reciprocal tariff tirade.
But briefly, kuch to softening ho rahi hai. Jaise unhone jo auto pe tariffs the, auto components pe, wo kuch kam kare hai. So even China ke prati unki kuch softening hai.
Dekhiye, shayad mujhe lagta hai ki is waqt dono ek dusre ka maap tol le rahe hain. अमेरिका और चीन के कौन पहले पलक झपकाता है और किसको वो पलक झपकाने में ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा नुकसान हो सकता है. दोनों ही देश आर्थिक रूप से काफ़ी समर्थ हैं, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं अपनी आर्थिक समर्थता को बनाए रखने के लिए. तो कितना नुकसान वो एक दूसरे का कर सकते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कितना नुकसान वो अपना झेल सकते हैं
और हम कितना फायदा उठा सकते हैं.
जी बिल्कुल.
करंटली इज अ 0.3% कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर इज बीइंग ब्लेम्ड ऑन द बाइडेन गवर्नमेंट.
Well, yes, of course, again, as I said, the domestic politics will, of course, rule the roost when we are talking about decisions being taken either this way or that way. But ultimately, deep down somewhere, the U.S. economic analysts also realize this fact that, somewhere down the line, some saner solution to this entire discussion will have to take place.
Okay. Moving on, coal production in the country has seen the growth of 3.63% in the month of April this year compared to last year. In a statement, Ministry of Coal has said that this growth reflects the continued efforts of the government to ensure consistent supply and operational stability in the sector. The ministry said that the overall coal production in the country during April 2025 reached 81.57 metric ton, marking an increase of over 78.71 metric ton produced in the corresponding period of the previous year. The Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange remain closed for the trading today on account of Maharashtra Day. Trading in the equity derivatives and securities lending and borrowing and currency derivatives segments also was shut. Yesterday, the benchmark domestic equity indices ended on a flat note in a lackluster trading session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange dropped 46 points to close at 80,242. The National Stock Exchange Nifty 50 slipped marginally by 2 points to settle at 24,334.
और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. जापान के अलावा अधिकांश प्रमुख एशियाई बाजार लेबर डे के उपलक्ष्य में बंद थे. इस बीच जापान का निकेई सूचकांक आज 1.1% से अधिक के उछाल में रहा. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के संभावित प्रभाव से जुड़ी चिंताएं बढ़ने के बीच बैंक ऑफ जापान ने लगातार दूसरी बैठक में अपनी प्रमुख ब्याज दर को 0.5% पर ज्यों का त्यों बनाए रखने का फैसला लिया. अमरीका द्वारा लगाए गए शुल्क और उसके बाद अन्य देशों द्वारा जवाबी कार्रवाई के उपरांत बैंक ऑफ जापान ने उच्च स्तर की सतर्कता दर्शाते हुए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को आधा करके 0.5% कर दिया है. प्रमुख यूरोपीय बाजारों की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बाजार आज लेबर डे के उपलक्ष्य में बंद थे, जबकि आखिरी समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था. आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके रेट कट का जो साइकिल है उस पर क्या असर पड़ेगा अभी जो ये टैरिफ सिचुएशन है, खासकर अगर हम आरबीआई की बात करें, आपको लगता है कि रेट कट साइकिल जारी रहेगी?
देखिए, उम्मीद तो यही है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात करें उसने अपनी रेजिलियंस दिखाई है पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन और खासतौर पे रेसिप्रोकल टैरिफ से जो पैदा हुई है, तो उससे हमको लगता है कि जो एक इंडिपेंडेंट स्टांस है वो मेंटेन कर सकते हैं. और जहाँ तक बाकी ग्लोबल बैंक्स की बात है, निश्चित रूप से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर जिस तरह से बुरा असर पड़ा है इसका, तो उनको ज़रूर फैक्टर इन करेंगे.
The US stocks ended mixed on Wednesday, with the Dow Jones Industrial Average and S&P 500 closing higher after a late rally. The indices recovered from losses suffered earlier in the session, which were triggered by data showing that the economy contracted in the first quarter for the first time in 3 years. According to the Commerce Department, its advanced gross domestic product report showed a 0.3% contraction for the first quarter. The Dow Jones Industrial Average rose over 0.35% and S&P 500 marked its seventh consecutive day of gains, rising by 0.15%. Meanwhile, the Nasdaq Composite ended nearly flat. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has concluded his visit to Norway, marking the first such visit by an Indian Commerce Minister in over 25 years. In a social media post shared last night, Minister Goyal described the visit as highly productive, expressing confidence that his engagement with Norway's political and business leadership would usher in a new phase of trust and growth in India-Norway relations. Oil prices fell today, extending a steep decline from the previous session amid concerns of mounting supply and data showing a contraction in the U.S. economy, the world's top oil consumer. Brent crude was trading almost 2% down at $59.85 per barrel. WTI crude was also down by 2.1% at $56.95 per barrel when reports last came in.
उधर सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 2.16% गिरकर 92,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 1% गिरकर 94,990 रुपए प्रति किलो पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 2.24% गिरकर 92,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.3% गिरकर 93,430 रुपए प्रति किलो पर था. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं. विशाल जी, आप आए और आपने हमारे मार्केट मंत्र के श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद सोनू जी.
थैंक यू विशाल फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi says this is the time of dawn of orange economy in India, inaugurates first World Audio Visual Entertainment Wave Summit in Mumbai today. Gross GST collection surges by 12.6% to an all-time high of 2.37 lakh crore rupees in April. Domestic stock markets remain closed on account of Maharashtra Day. And global crude oil prices fall amid mounting supply concerns, Brent crude trades at $59.85 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.